किचन की हल्की सी रोशनी में अखिल गैस के सामने खड़ा था। पैन से उठती भाप और मसालों की खुशबू पूरे माहौल को महका रही थी। पीछे से हाई हील्स की टक-टक आवाज आई। रैना कैटवॉक की तरह मस्ती से अंदर आई। उसके कदमों में आत्मविश्वास और चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वाह, मिस्टर शेफ खुद किचन में, रैना ने हंसते हुए कहा और काउंटर पर हाथ रखकर झुक गई। तो आज क्या स्पेशल बना है, उसने आंखें संकरी करके पूछा, जैसे राज खोलने वाली हूँ। अखिल ने बिना उसकी तरफ देखे स्पैचुला घुमाते हुए कहा, बस तुम्हारी फेवरेट डिश, गार्लिक बटर पास्ता, साथ में ग्रिल्ड मशरूम और थोड़ी सी स्पाइसी सूप। रैना ने भौहें ऊपर उठाई। ओह, तो मुझे इम्प्रेस करने का प्लान है। अखिल ने हल्का हंसते हुए सिर घुमाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे भी पसंद है, इसीलिए बना रहा हूँ। अच्छा, रैना ने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसे ये संयोग जरा भी मासूम नहीं लग रहा। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। मोमबत्ती की हल्की लौ टेबल पर सुनहरी परछाई बना रही थी। तो ऑफिस कैसा चल रहा है, रैना ने सूप का पहला चम्मच लेते हुए पूछा। अखिल ने गहरी सांस छोड़ी। बहुत मुसीबत चल रही है, हर तरफ काम ही काम है, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, मैं तो पागल सा हो गया हूँ। रैना ने हंसकर कहा, लेकिन अर्जुन भैया भी तो हैं और पापा भी, वो भी तो तुम्हारे साथ काम करते हैं। हाँ हैं, लेकिन मुझे आजकल टेंशन कुछ ज्यादा ही रहने लगी है, अखिल ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जैसे किसी को भरोसा दिला रहा हो कि उसकी परेशानी सच है। रैना ने चम्मच रख दिया और कुर्सी की पीठ से टिकते हुए बोली, अच्छा तो टेंशन ज्यादा है। अखिल ने सिर हिलाया, हाँ बहुत ज्यादा। रैना की आंखों में शरारत उभर आई, होठों पर धीमी मुस्कान आई। तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हारी टेंशन दूर कर दूंगी। अखिल के चेहरे पर हल्का आश्चर्य और फिर तेज उत्साह आ गया। ओ सच में? हाँ, आज वाइल्ड रोमांस होगा, रैना ने आंख मारते हुए कहा। अखिल का दिल धड़क उठा। मोमबत्ती की लौ जैसे एक पल को और तेज जल उठी हो और कमरे में अचानक से एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। रात के करीब 11 बज चुके थे। पुलिस ऑफिस का ज्यादातर स्टाफ जा चुका था, मगर अजय का केबिन अब भी रोशनी में डूबा हुआ था। खिड़की के बाहर अंधेरा पसरा था और भीतर टेबल पर एक पीली लैंप लाइट, जो पूरे कमरे में एक गहरी गंभीर छाया फैला रही थी। अजय अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठा था। उसके हाथ में एक छोटी सी फोटो थी, अनन्या की फोटो। वो वही तस्वीर थी जो उसने एक बार उसके हॉस्टल के बाहर खींची थी, जब उसके बालों में एक सफ़ेद सी हेयर पिन लगी थी। बालों की लट उसके चेहरे पर आकर टिक गई थी और उसकी मासूम सी मुस्कान जैसे किसी को भी खींच ले। अजय की उंगलियां तस्वीर के कोने पर धीरे धीरे फिर रही थीं। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उसमें कोई पुरानी सोच जम गई हो। तुम, उसने धीमे भारी स्वर में कहा, बहुत बड़ी मुसीबत में हो अनन्या। उसने हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे इस सच को बोलना भी मुश्किल हो। और अब तुम्हें इस मुसीबत से कोई नहीं बचा सकता, सिवाय मेरे। केबिन में सन्नाटा था, बस दूर से आती पंखे की धीमी सी घूमने की आवाज। बाहर गलियारे में कभी कभार किसी गार्ड के कदमों की आहट सुनाई दे जाती थी, लेकिन यहाँ अजय और उस तस्वीर के बीच जैसे समय ठहर गया हो। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक पुलिस वाला हूँ जो तुम्हें पकड़ने के लिए पीछे पड़ा है, अजय की आवाज में हल्की कड़वाहट थी, लेकिन सच ये है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी इस गंदगी में फंसी रहे। उसने तस्वीर को सीधा किया, मानो अनन्या की आंखों में देखकर बात कर रहा हो। तुम्हें ये पता भी नहीं कि जिस खेल में तुम फंस चुकी हो वो कितना बड़ा है, और इसमें सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं डूबेगा, तुम्हारे अपने भी। अजय ने अपनी नजरें तस्वीर से हटाकर टेबल पर रखी फाइलों की तरफ घुमाई, मोटी मोटी केस फाइलें जिनमें से एक पर लाल रंग में नार्कोटिक्स लिखा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान किसी खुशी की नहीं बल्कि एक पक्के इरादे की थी। तुम सोचती हो मैं तुम्हारे पीछे क्यों हूँ? अजय ने फोटो को फिर से उठाया और करीब लाकर देखा। तुम्हें बचाना, शायद ये मेरे लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं है, उसने खुद से बदबुदाया, ये कुछ और है जिसे मैं खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। एक पल के लिए उसकी आंखें नरम पड़ी, उसे याद आया हॉस्टल के गेट पर अनन्या को देखना, वो हल्की सी घबराहट और फिर भी आंखों में जिद की चमक। तुम्हारे अंदर एक अजीब सी ताकत है, अजय ने धीमे से कहा, लेकिन तुम उसे गलत जगह लगा रही हो। वो कुर्सी से आगे झुककर बैठा, कोहनी टेबल पर टिकाई और तस्वीर को अपने सामने रख दिया। अब खेल मेरे हाथ में है अनन्या, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें इस गंदगी से निकालूंगा, चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए। उसने एक लंबी सांस ली और ड्रॉअर से अपनी पिस्तौल निकाली, उसे हाथ में घुमाते हुए बोला, कभी कभी किसी को बचाने के लिए बाकी सबको दुश्मन बनाना पड़ता है। फिर पिस्तौल वापस रखी और तस्वीर को सावधानी से अपनी डायरी में दबा दिया। कल शायद तुम्हें फिर देखूं और तब तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं दुश्मन नहीं हूं। केबिन में घड़ी की टिक-टिक अब ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। अजय ने अपनी जैकेट पहनी, लाइट ऑफ की और तस्वीर को सीने की जेब में रखकर बाहर निकल गया, जैसे वो अब उसके केस का सबूत नहीं बल्कि उसकी हिफाजत की वजह बन चुकी हो।